हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का सात दिवसीय इस राम कथा में हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रारंभ करने से पहले हमारे आराध्य इष्ट देव बजेंद्र नंदन भगवान श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों में शत शत नमन करता हूँ। तदंतर हमारे परम प्रिय श्री कृष्ण बलराम के चरणों में कोटि कोटि वंदन अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात कलयुग के पावन अवतार करुणा वरुणालय साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही श्रीमती राधा रानी का भाव ग्रहण करके इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। ऐसे महावदान्य चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात यहां पर सात दिन तक श्री राम कथा गानी है। रामायण के मर्मज्ञ रामायण पर बहुत सुंदर टीका लिखने वाले भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात रामायण हो श्रीमद् भगवद गीता हो या श्रीमद् भागवत कहो, ये समस्त ग्रंथों का प्राकट्य हमारे भारतवर्ष में हुआ है। भारत की संस्कृति को भारत और पूरे विश्व भर में इन दिव्य ग्रंथों का प्रचार प्रसार करने वाले और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य जगत गुरु परम गुरु श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरण में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे गुरुदेव जिनकी कृपा कटाक्ष से जिनके आशीर्वाद अनुग्रह प्रेरणा और जिनकी कथा को सुनकर आज हम कथा कहने के लिए कुछ थोड़े से योग्य बने हैं, ऐसे प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय हमारे गुरुदेव श्री राधा गोविंद गोस्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात समस्त स्थान समस्त देश और काल में हमने जिन जिन लोगों से शिक्षा ग्रहण की है, छोटे बड़े माता पिता ये समस्त महानुभावों के चरणों में कोटि कोटि वंदन अर्पित करता हूं। तत्पश्चात श्री राम कथा सुनने के जिज्ञासु भगवान राम को अपना आराध्य इष्ट देव मानने वाले भगवान के प्रति हृदय में प्रेम रखने वाले यहाँ पर पधारे हुए और जितने सदस्य टीवी में हम को यहाँ पर देख रहे हैं, ये सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आप सब हमें आशीर्वाद कृपा प्रदान कीजिए ताकि आपकी कृपा से ही आप सब भक्तों को भगवान रामचंद्र की कथा श्रवण करा सकूं। मैं आभारी हूं उन भक्तों का जो भक्त यहां पर दूर दूर से आए हैं, विरार के कोने कोने से यहां पर पधारे हुए, और विरार से दूर चले तो भाईंदर, मीरा रोड और हमारे अंधेरी, पारला, लोखंडवाला से हमारी सब माताएं आई हैं, और कुछ लोग चनी रोड से यहाँ पर पधारे हैं। ये सभी भक्तों को मैं धन्यवाद अर्पण करता हूँ, और मैं भूरी भूरी धन्यवाद उन भक्तों को देना चाहता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने में अपना पूर्ण रूप से तन, मन और धन से सहयोग किया है। मैं जानता हूँ हमारे विरार के भक्तों ने बहुत परिश्रम करके, कई महीनों से मेहनत करके, जैसे ठाकुर भक्ति विनोद सभी लोगों के घर घर जाकर एक एक रुपया लेकर बृहद मंदिर बनाना चाहते थे, वैसे हमारे विरार के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के भक्तगण सभी लोगों को कृतार्थ करने के लिए, ये सौभाग्य प्रदान करने के लिए सबके घर घर, दुकान दुकान में जा जाकर इस कथा को आज इस अंजाम पर लाए हैं। ये सभी भक्तों को मैं भूरी भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ। निश्चित भगवान श्री राम और कृष्ण का प्रेम आपके हृदय में प्राप्त हो, ऐसी आशा और अभिलाषा रखता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र की कथा आज से प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम दिन है, देरी हो ही जाती है, परंतु देर ही सही, प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र को प्रणाम करते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की जय। आज से 5000 वर्ष पहले द्वापर युग के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में, आप सब भक्त जानते होंगे कि संसार में, इस जगत में चार युग हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। ये चारों युगों में कोई भयंकर युग यदि कोई है तो वो है कलयुग। कलयुग में बहुत सारे दोष होते हैं, क्लेश होते हैं, पाप होते हैं। भागवत में तो यहां तक लिखा है, कलेर दोषे निधे राजन। यह कलयुग दोषों का सागर है, समुद्र है। जैसे ही द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का प्रारंभ होने जा रहा था, उसी समय इस दुनिया में रहने वाले सभी छोटे बड़े ऋषि मुनि एकत्रित हुए, डर गए कि अब कलयुग आने वाला है, कलयुग से रक्षा करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। लगभग 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर, ये बज रहा है, इसका कुछ कीजिए। हरे कृष्ण। 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी, भयावह कलयुग आ रहा है, आप हमें ऐसा स्थान का निर्देश कीजिए जहां पर कलयुग का प्रभाव ना हो। स्थान का भी प्रभाव होता है, जैसे स्थान में आप बैठते हो आपका मन ऐसा हो जाता है। आप देखिए, कल इस समय 8:35 हुई है, कल 8:35 को आप टीवी के सामने थे और आपका मन कैसा था, पर आज भगवान के सामने बैठे हैं आपका मन कैसा है। जैसा स्थान होता है ऐसा प्रभाव होता है, स्थान का अपना प्रभाव है। इस संसार में भी आप देख सकते हो, यदि किसी बीज को कोई बंजर भूमि में आप बो दो, फलेगा फूलेगा नहीं, परंतु उसी बीज को किसी फलद्रुप भूमि में डाल दो, वह एक बीज 70-80 गुना होकर बड़ा होता है। वैसे स्थान की कुछ महिमा होती है। ये समस्त ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर कहे, हमें ऐसा स्थान निर्माण करके दो जहां पर कलयुग का प्रभाव न हो। ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र तैयार किया और उस चक्र को ब्रह्मा जी ने ब्रह्म लोक से छोड़ा। वह चक्र घूमते 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 नैमिषारण्य क्षेत्र में आकर गिरा। आज भी चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। 88,000 ऋषि मुनि उस स्थान पर गए और वहां जाकर 1,000 वर्ष तक यज्ञ करने का अनुष्ठान किया। 17 स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत, सहस्त्र 1,000 वर्ष तक यज्ञ करने का अनुष्ठान है भक्तों। परंतु उसी समय सुखदेव गोस्वामी के मुख से कथा सुनकर सूत गोस्वामी संसार में विचरण करते करते नैमिषारण्य क्षेत्र में पधारे। नैमिषारण्य में जब सुध गोस्वामी आए, 88,000 ऋषि मुनियों को पता चला और यह सुनते ही तुरंत अपना यज्ञ हवन ये सब बंद करके सुखदेव सुध गोस्वामी के मुख से कथा सुनना प्रारंभ किया। 88,000 ऋषि मुनि जिज्ञासा करते हैं कि हे सुध गोस्वामी, भगवन सर्वमाख्यातम यत् पृष्ठम विदुषात्वया, आप बहुत विद्वान हो, समस्त वेद शास्त्र पुराण उपनिषद को आपने सुना है और उन पर बहुत सुंदर व्याख्या की है, पर आप तो जानते हैं संसार पाश्य बंधानाम दुखानी सुबहु नीचा। वेद व्यास जी रामायण ग्रंथ के प्रारंभ में यह कथा सुनाते हैं, लिखते हैं। 88,000 ऋषि मुनि सूत गोस्वामी से कहते हैं कि प्रभु, इस जगत में बहुत दुख है, बहुत सारे बंधन हैं, अनेक बंधन इस जगत में जीवों के ऊपर लगे हैं। ये भगवान का अंश, परमात्मा का यह छोटा सा अंश आत्मा देखा जाए तो परम स्वतंत्र है। आत्मा का स्वरूप है सत चित आनंद। आनंद में रहना ये हमारा, दूसरे शब्दों में आत्मा का आनंदमय रहना स्वरूप है, परंतु उस आत्मा के ऊपर अनेक बंधन लग चुके हैं। अनेक बंधन, संसार पाश बंधाना, आत्मा के ऊपर मन का बंधन, बुद्धि का बंधन, अहंकार का बंधन, काम का बंधन, क्रोध का बंधन, लोभ का बंधन, मोह का बंधन, पिता का बंधन, माता का बंधन, पत्नी का बंधन, पुत्र का बंधन, देश का बंधन, समाज का बंधन, जन्म का बंधन, रोग का बंधन, बुढ़ापा का बंधन, मृत्यु का बंधन, एक से एक बंधन इस आत्मा के ऊपर लग चुके हैं और यह बंधन ही दुख का कारण है। आत्मा के ऊपर लगे हुए यह बंधन ही हमारे अनेक दुखों का कारण है, परंतु हम लोग इस बंधनों के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। परंतु कलयुग के प्रारंभ में 88,000 ऋषि मुनियों ने सोचा था और सोचकर सुध गोस्वामी को पूछा कि हे प्रभु, घोर कलयुग आ रहा है और इस कलयुग में अधर्म नित राना नाम। सब लोग अधर्मी होंगे, कलयुग में सब लोग अधर्म के मार्ग पर चलेंगे। घोरे कलयुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते। और प्रायः कलयुग में लोग वेदों का बहिष्कार करेंगे, शास्त्र का बहिष्कार करेंगे। और बात भी सत्य है, आज कलयुग में आप कहो भगवत गीता पढ़ो विश्वास नहीं करेंगे, भागवत पढ़ो रामायण पढ़ो विश्वास नहीं करेंगे, और थर्ड क्लास के न्यूज़पेपर के ऊपर विश्वास तुरंत कर लेंगे जो किसी साधारण व्यक्ति ने लिखा है। एक साधारण व्यक्ति के लिखे हुए पत्र के ऊपर विश्वास है, परंतु कलयुग के मनुष्य को भगवान के द्वारा लिखे गए वेदों के ऊपर विश्वास नहीं है। यह है कलयुग का प्रभाव। कलयुग आ रहा है, स्त्रीय स्व पोषण परा वेश्याचरण तत्परा। प्रायः कलयुग की स्त्रियों का आचरण वेश्या के समान हो जाएगा। पति वाक्य मना द्वितीय, और कलयुग में स्त्री अपने पति की बात का इनकार करेगी, पति की बात को आदर नहीं देगी। सदान्य गृह तत्परा, और पतिगण अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों के ऊपर दृष्टि डालेंगे। यह है कलयुग का प्रभाव। पाखंड आलाप नितरा पाखंड जनसंगीन। इस संसार में पाखंड लोगों का संग करके सब लोग पाखंडी हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धि गतम कली। और जिस समय ब्राह्मणों की मति बिगड़ेगी तब कलयुग का अंत आया समझिए, कलयुग का अंत होने लगेगा। घोर कलयुग कब आएगा? जब ब्राह्मणों की बुद्धि बिगड़ेगी। और आ गया है कलयुग। आज भगवान ने ब्राह्मणों को वेद शास्त्रों का पठन पाठन यजन याजन शम दम तप शोच शांति ऊर्जव एवच, भगवान ने अनेक ब्राह्मणों के कार्य बताए, परंतु ब्राह्मण आज इनमें से एक कार्य भी नहीं करता है। समाज को सुधारने के लिए, समाज को शुद्ध ज्ञान देने का जो भार है, जो कर्तव्य है, ये आज के ब्राह्मणों का है। परंतु ब्राह्मण लोग अपना पेट भरने के लिए संसार में विचरण करते हैं, भीख मांगते हैं। घोरे कलयुगे ब्राह्मण जनानाम पाप कर्मिणम। हे ब्राह्मण, हे शुद्ध गोस्वामी, इस घोर कलयुग में सब लोग अनेक अनेक प्रकार के पाप करेंगे, और मन शुद्धि विहीना नाम, और मन में किसी भी प्रकार की शुद्धि नहीं होगी। इसलिए हे प्रभु, हे शुद्ध गोस्वामी, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ऐसी कथा सुनाइए कि जिससे कलयुग में आने वाले लोग कलयुग के इस दोष से मुक्त हो जाए। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ दोषों से मुक्त होने के साथ साथ वह कथा सुनकर भगवान भी खुश हो जाए, भगवान भी प्रसन्न हो जाए, भगवान भी आनंदित हो जाए, ऐसी कथा आप हमें सुनाइए। कैसी कथा सुनाने के लिए कह रहे हैं? जिस कथा से हमारी शुद्धि हो, जिस कथा से पूरे संसार की शुद्धि हो, और जिस कथा से भगवान की तुष्टि हो, भगवान प्रसन्न हो, ऐसी कथा सुनाइए। मुनियों की जिज्ञासा सुनकर सूत गोस्वामी कहते हैं, शृणुद्वम ऋषयः सर्वे यदिष्टं वो वदाम्यहं गीतं सनत कुमाराय नारदेन महात्मना। आप लोगों ने बहुत सुंदर उत्तम जिज्ञासा की है, इसलिए नारद जी ने सनत कुमार को जो कथा सुनाई थी वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। बोले प्रभु, वो कौन सी कथा है? शिव पुराण है, गणेश पुराण है, या मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण? कौन सी कथा नारद जी ने सुनाई थी जिस कथा से हमारी शुद्धि हो, पूरे जगत की शुद्धि हो, और भगवान की तुष्टि हो? तब कहते हैं, रामायणं महाकाव्यं यदीष्टं मो वदाम्यहं गीतं सनत्कुमाराय दुष्टग्रहनिवारणं। वह कथा गरुड़ पुराण की नहीं है, वह कथा स्कंद पुराण की नहीं, पद्म पुराण की नहीं, वह कथा है भगवान रामचंद्र की, चरित्र समेत श्रीमद् रामायण। रामायणम महाकाव्यम, रामायण को वेद व्यास जी ने और सुध गोस्वामी ने महाकाव्य कहा है। भक्तों, रामायण जो है वो गद्य नहीं है, पद्य है। दो प्रकार के विभाग होते हैं, गद्य और पद्य, लेसन और पोएम। ये रामायण लेसन नहीं है, गद्य नहीं है, ये रामायण काव्य है, कविता है, इसे गाना है। रामायण को बोला नहीं जाता है, रामायण को आप जितना गाते हो उतना आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि ये कविता है और साधारण कविता नहीं है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं है। रामायणम महाकाव्यम, ये महाकाव्य है। महा के अनेक अर्थ आचार्यों ने किए हैं, महा का अर्थ होता है बृहद, जिसका कभी अंत न हो। इस काव्य का, इस कथा का कभी अंत कोई नहीं कर सकता है, महाकाव्य। यहां तक महाकाव्य का दूसरा अर्थ होता है ये रामायण, भगवान रामचंद्र के चरित्र अनेक लोगों ने लिखे हैं। रामायण शत कोटि अपारा, रामायण जो है शत कोटि, 100 करोड़ लोगों ने लिखा है ग्रंथ, महाकाव्य। रामायणम महाकाव्यम सर्व वेदेशु सम्मतम, और ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ये रामायण जो है सर्व वेदेशु, सभी वेदों का सम्मानित किया हुआ ग्रंथ है। सर्व पाप प्रशमनम, यदि कोई इस रामायण को सुनता है तो सुनने वाला सभी प्रकार के पापों से, प्रशमनम प्रकृष्ट रूपेण शमनम, सभी प्रकार के पापों से पूर्ण पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, दुष्ट ग्रह निवारणम, संसार में जितने भी दुख हैं उनके जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं इस रामायण को सुनने से। बोले ठीक है प्रभु, परंतु यदि कि कोई बहुत बड़ा पापी है, किसी ने बहुत पाप किए हैं, उसका क्या होगा? बोले कितना भी पापी क्यों न हो, महापातक यो युक्त्वा, महापापी हो, जीवन में सभी प्रकार के पाप यदि किसी ने किए हैं, युक्तो वा सर्व पातके, एक से एक पाप करने वाला व्यक्ति भी श्रुत्वे दार्श दिव्यम ही, यदि इस दिव्य रामायण की कथा को सुन लेता है तो काव्यम शुद्धिम अवाप्नवात, वह तुरंत जीवन में शुद्ध हो जाता है। जीवन में शुद्धि तब तक नहीं आएगी जब तक हम भगवान रामचंद्र की इस कथा को नहीं सुनेंगे। परंतु भक्तों, ये कथा सबको प्राप्त नहीं होती है। दुर्लभेव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा, श्रीमद् रामायणोद्भवा, रामायण की यह कथा जो है बहुत दुर्लभ है। आप कह सकते हैं नहीं, आस्था में तो हम रोज देखते हैं, संस्कार सत्संग ये सब चैनलों में, यहां वहां सब जगह पर देखते हैं सुनते हैं, दुर्लभ कहां है? तो क्या यह शास्त्र गलत है? दुर्लभ का अर्थ यह है, कथा तो बहुत जगह पर बहुत प्रकार की होती है, परंतु शुद्ध कथा करने वाले लोग जगत में बहुत कम है। शुद्ध कथा किसे कहते हैं? भगवान के, भगवान रामचंद्र के चरित्र शुद्ध है, इनमें कोई दोराई नहीं है, परंतु भगवान रामचंद्र के चरित्र को बोलने वाला भी शुद्ध होना चाहिए। यदि बोलने वाला शुद्ध नहीं है तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, दूध कितना भी अच्छा हो, दूध में सभी प्रकार के गुण सर्व गुण संपन्न है, परंतु उस दूध को किसी सर्प ने स्पर्श कर लिया तो इतना अच्छा दूध विष बन जाता है। रामायण बहुत दिव्य ग्रंथ है, बहुत सुंदर पवित्र ग्रंथ है, परंतु किसी अभक्त के द्वारा इस रामायण को यदि सुना जाए तो वही जहर की तरह हमारे जीवन में प्रभाव करती है। शुद्धता का अर्थ क्या है? भक्तों, भगवान की कथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, भगवान की कथा भगवान को रिझाने के लिए होती है, परंतु संसार के कुछ वक्ता इस भगवान की कथा को अपनी जीविका बनाकर बैठे हैं। कथा भगवान की है, ग्रंथ वेद व्यास जी ने लिखा है, सब कुछ भगवान का, सब कुछ आचार्यों का, और पैसे खुद अपने जेब में रख लेते हैं। जो लोग चंद रुपयों के लोभ में भगवान की कथा बेचते हैं, वो बेचने वाले शुद्ध कथा नहीं कर सकते हैं। कथा को बेचना नहीं है, कथा को बांटना है। और ये कथा जो है प्रभु राम को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए करनी चाहिए। तो इस संसार में गोविंद को रिझाने के लिए, राघव को रिझाने के लिए कथा करने वाले बहुत कम हैं। इसलिए कहते हैं, दुर्लभैव कथा लोके, ऐसे शुद्ध भक्तों के मुख से कथा सुनना बहुत दुर्लभ है। और ऐसे शुद्ध भक्तों से कथा वही सुन सकता है, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तुलभ्यते, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों जन्मों से सुकृति की है, पुण्य किए हैं, जाने अनजाने में किसी वैष्णव भक्त या भगवान की सेवा की है, ऐसा सुकृतिशाली व्यक्ति ही शुद्ध भक्त के मुख से भगवान राम की कथा को सुन सकता है, अन्यथा नहीं सुन सकता। आज मैं देख रहा हूं कलयुग में अनेक दोष हैं, पाप हैं, परंतु आज भी कलयुग के जीव में सुकृति है, पुण्य है, सत्कर्म है, इसलिए यहां पर अनेकों लोग अनेकों संख्या में आकर बैठे हैं। निश्चित भक्तों, इस जीवन में नहीं तो पूर्व जन्म में आप लोगों ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत अच्छा कार्य किया है कि श्रील प्रभुपाद जी की संस्था के किसी भक्त के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी के अनुग्रहित इस शुद्ध राम कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है, नहीं तो ये हो नहीं सकता है। भगवान रामचंद्र की कथा भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न करके जगत को सुखी करती है। राम कथा का आयोजन था, कई लोगों ने जिज्ञासा की, प्रभु हम तो हरे कृष्ण हरे राम वाले हैं, आप तो कृष्ण के भक्त हैं, फिर राम कथा करने क्यों जा रहे हैं? राम कथा में तो राम के चरित्र हैं, आप कृष्ण के भक्त हो, तो वास्तव में देखा जाए तो राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों एक हैं। राम और कृष्ण में केवल एक ही अंतर है। एक रसिक संत ने बहुत सुंदर कहा, मुझे बात याद आई, राम कृष्ण दो एक है, राम और कृष्ण दोनों एक हैं। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। एक निमेश का भी राम और कृष्ण में अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है। राम के नयन कैसे हैं? राम के नयन गंभीर है, उनके नयन, राम के नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। दो बस केवल एक अंतर है, राम के नयन जो है गंभीर है और कृष्ण के नयन चपल है, बस केवल कृपा कटाक्ष का अंतर है। एक का चरित्र गंभीर है, लोक मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम है, और एक कोई मर्यादा नहीं। जितने लोग आए सब आओ, कुबजा मिली तुम भी आओ, गोपी मिली तुम भी आओ, मथुरा वाली तुम भी आओ, गोकुल वाली तुम भी, सबका स्वागत, स्वागतम तू महाभागा। ये है कृष्ण। और राम, राम के जीवन में भी बहुत सारे आए, जनकपुर में रहने वाली स्त्रियां आई, दंडकारण्य के ऋषि आए, अनेक अनेक स्त्रियां आई, कोल भील की स्त्रियां, यहां तक बहुत सुंदर रूप बनाकर सूर्पणखा भी आई, परंतु राम ने कह दिया एक बाण एक वचन और एक पत्नी, ये राम दूसरी पत्नी के साथ विवाह नहीं कर सकता। ये है गंभीर, और ज्यादा अंतर नहीं है। बोलिए सब लोग साथ में, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। दोनों एक है, दोनों समान है, दोनों समान है, परंतु तत्व से यदि देखा जाए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। ये हम लोग नहीं कहते हैं, कृष्ण ही भगवद गीता में कहते हैं कि अर्जुन, इस संसार में मनुष्य जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम जन्म, प्रहलाद महाराज ने सप्तम स्कंद में कहा, यह मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, 84 लाख के चक्कर काटने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी उसमें कृष्ण की भक्ति करना है तो उससे भी दुर्लभ है। इसलिए गीता में कृष्ण को कहना पड़ा, हे अर्जुन, मनुष्याणाम सहस्त्रेशु कश्चित यतति सिद्यते, सहस्त्रेशु मनुष्येशु, सहस्त्र सहस्त्र मनुष्यों में कोई एक विरला ही मेरी शुद्ध भक्ति कर सकता है। कृष्ण की भक्ति करने के लिए शुद्धता चाहिए, पवित्रता चाहिए, उन्नत उज्जवल भाव चाहिए, और वहां तक, उन्नत उज्जवल भाव तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और श्री प्रभुपाद जी की भाषा में कहूं तो कृष्ण की भक्ति करने के लिए सबसे पहले तो मनुष्य बनना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आया, धोती कुर्ता पहनकर, प्रभुपाद प्रभुपाद मैंने चाय छोड़ दिया, मैंने शराब पीना छोड़ दिया, मैंने मांसाहार करना छोड़ दिया, मैंने नशा करना छोड़ दिया, मैंने परस्त्री संग करना छोड़ दिया, अब तो मैं शुद्ध भक्त हो गया ना प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा तुम शुद्ध भक्त नहीं, तुम अभी मनुष्य बने, आज की तारीख में तुम मनुष्य बने, भक्त तो अब बनोगे, भक्त बनने के लिए पहले मनुष्य बनना चाहिए। और इस कलयुग में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, आज सिंह को शेर को कहना नहीं पड़ता कि तू शेर बन, वो शेर बना हुआ है, आज गाय को कहना नहीं पड़ता कि तू गाय बन, आज चिड़िया को कहना नहीं पड़ता कि तू चिड़िया बन, परंतु आज मनुष्य को कहना पड़ता है कि तू मनुष्य बन, मनुष्य नहीं। अब देखिए संसार में लोग, जगत के सभी जीव सभी प्राणी अपनी अपनी मर्यादा में है, इस संसार का तुच्छ एक एक छोटा सा कीड़ा भी अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ता है। भगवान ने सिंह को, शेर को मांस खाने के लिए बनाया तो वो मांस ही खाता है, भूल से भी घास। किसी के खेत में जाकर सुना आपने, हमारे खेत में शेर आया था, घास खा रहा था, अपनी मर्यादा में। भगवान ने गाय को घास खाने के लिए बनाया, वह घास खाती है। कभी सुना गाय खड़े खड़े मांस खा रही थी? कभी? गाय को कहना नहीं पड़ता है, गाय गाय बनी है, वह शेर शेर बना है। परंतु आज मनुष्य को कहना पड़ता है कि तू मनुष्य बन, क्योंकि मनुष्य घास भी खाता है, मांस भी खाता है, अंडा भी खाता है, कुत्ते का भी खा लेता है, सुअर का भी खा लेता है, कुछ भी खा लेता है। मनुष्य बनने की जरूरत है, कम से कम अपने आप को मनुष्य तो बनाओ। भगवान श्री रामचंद्र का यह चरित्र मनुष्य बनाने के लिए है। एक मनुष्य के कर्तव्य कैसे होने चाहिए, एक जेंटलमैन व्यक्ति कैसा होता है, ये आदर्श यदि किसी ने दिखाया तो है राम। संसार में कहते हैं कि हम जेंटलमैन हैं, केवल सूट बूट और टाई पहन लेने से कोई जेंटलमैन नहीं होता है। एक आदर्श व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र है, और इसे भगवान रामचंद्र का जन्म ही इसी के लिए हुआ है। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी अन्य लोक लोकांतर का वर्णन जब करने लगे, तब वर्णन करते करते उन्होंने किम पुरुष का वर्णन किया। किम पुरुष अर्थात इस ब्रह्मांड में एक ऐसा लोक है जहां पर किम पुरुष रहते हैं। किम पुरुष का अर्थ क्या होता है? किम पुरुष का अर्थ माने वानर। वानर को संस्कृत में किम पुरुष कहा जाता है, क्यों जानते हैं? क्योंकि ये एक ऐसी जाति है जिसको देखकर हमारे मन में तुरंत प्रश्न होता है, क्या ये पुरुष है या वानर है? किम पुरुष एक एक प्रश्नार्थ चिन्ह है, क्या ये पुरुष है? तब उस जाति का नाम ही हो गया किम पुरुष। किम पुरुष वर्ष का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वहां पर हनुमान जी महाराज के साथ उनके अनेक पार्षद मित्र रहते हैं, और हनुमान जी महाराज भगवान को स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, संसार के लोग आपके जन्म के अनेक अनेक कारण बताते हैं, परंतु आपका ये दास जानता है कि आप इस जगत में क्यों आए। अब बात भी सही है, हनुमान जी से ज्यादा भगवान रामचंद्र इस संसार में क्यों आए कौन जान सकता है। हनुमान जी महाराज अपने मुख से कहते हैं कि हे प्रभु, मर्त्य अवतार तु ही मर्त्य शिक्षणम रक्षा वदाए व न केवलम विभो। हे प्रभु, आपका जन्म इस संसार में रावण को मारने के लिए नहीं हुआ है। ये बात अलग है कि आपकी प्रार्थना है यदा यदा ही धर्मस्य, परंतु भक्तों विचार करो, जो भगवान अपने धाम में बैठे हुए अपने एक इशारे से अनंत कोटि ब्रह्मांड को गिरा सकते हैं, प्रलय कर सकते हैं, उस भगवान को किसी छोटे से एक असुर को मारने के लिए स्वयं यहां आने की जरूरत नहीं है। भगवान रावण को मारने के लिए नहीं आए, भगवान यहां पर धर्म की स्थापना करने के लिए भी नहीं आए। भगवान राम क्यों आए हैं? हनुमान जी महाराज कहते हैं, मर्त्य अवतार, मर्त्य का अर्थ होता है मनुष्य। इस जगत में जितने भी मनुष्य हैं, मरण धर्मा मनुष्य को अपने आचरण से शिक्षा देने के लिए भगवान राम इस जगत में आए हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुनकर हमारा हृदय पवित्र हो सकता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से हम प्रेरणा नहीं ले सकते हैं। कृष्ण ने 7 दिन 7 रात तक अपनी कानी उंगली पर गोवर्धन धारण किया, तो क्या हम वो उठाने जाएंगे? चलो हम भी ट्राई करते हैं। कृष्ण के चरित्र से सुख मिलता है, पवित्रता आती है, कृष्ण के चरित्र से हृदय शुद्ध होता है, सही है। परंतु भगवान कृष्ण के चरित्र से प्रेरणा नहीं मिलती है। यदि आपको प्रेरणा लेनी है तो भगवान रामचंद्र के चरित्र से मिलेगी, अद्भुत प्रेरणा। एक भाई को भाई के प्रति कैसा कर्तव्य निभाना चाहिए, एक पुत्र को पिता के प्रति कैसे कर्तव्य निभाने चाहिए, एक पति को पत्नी के प्रति, एक राजा को अपनी प्रजा के प्रति कैसे कर्तव्य का पालन करना, ये तो एकमात्र भगवान रामचंद्र ही जानते हैं। इसलिए भगवान रामचंद्र का चरित्र हमारे जीवन के लिए बहुत प्रेरणादायक है। भगवान रामचंद्र के चरित्र से हमको प्रेरणा लेनी है और इस प्रेरणा से हम हमारे जीवन को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे और साथ ही साथ कृष्ण भक्ति कर सकते हो। और रामचंद्र के चरित्र को सुनकर यदि राम के प्रति प्रेम हो गया तो मृत्यु के बाद भगवान अपने साकेत धाम में बुला लेते हैं और भगवान भक्तों को अपने बाजू में बिठाते हैं। अनेक दृष्टि से भगवान रामचंद्र की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने देखा कि इस भारत में माया का प्रभाव बढ़ेगा और इस भारत में भी मुंबई नगरी में माया का प्रभाव प्रचंड होगा और मुंबई नगरी में मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा। विशेष करके श्री प्रभुपाद जी ने मुंबई में रहने वाले जीवों को मनुष्य बनाने के लिए अपने हाथों से राम लक्ष्मण और जानकी ये तीनों विग्रह की स्थापना जुहू मंदिर में कर दिया, नहीं तो प्रभुपाद जी को यह आवश्यकता नहीं थी। तो श्री प्रभुपाद जी की कृपा लेकर इस रामचंद्र के चरित्र को हम सुनना प्रारंभ करेंगे। वास्तव में ये रामायण जो है भगवान का वांगमय स्वरूप है। जैसे श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है वैसे ही ये रामायण भगवान श्री रामचंद्र का स्वरूप है। इस रामायण में 7 कांड है। रामायण के प्रथम बाल कांड जो है भगवान के चरण है, ये दृढ़ता की निशानी है। यदि कोई बाल कांड को सुनता है तो उनके जीवन में दृढ़ता आती है। रामायण का अयोध्या कांड ये भगवान श्री रामचंद्र की जंगा है। जिस अयोध्या कांड में भगवान ने अनेक दृढ़ निर्णय लिए, अरण्य कांड भगवान का कटी प्रदेश, किष्किंधा कांड भगवान का वक्ष स्थल, इस किष्किंधा कांड में भगवान ने अपने भक्तों को अपने हृदय से लगाया, अपने गले से लगाया और अनेक भक्तों को अपने पास बुलाया। सुंदर कांड रामायण का सुंदर कांड भगवान श्री रामचंद्र का कंठ है। आचार्यों ने बहुत सुंदर ये बात बताई है, भगवान का कंठ है सुंदर कांड। क्यों? क्योंकि सुंदर कांड को अनेक अनेक सुर में, अनेक राग में गाया जा सकता है। आज भी अनेक लोग सुंदर कांड का पाठ करते हैं तो इसे हमारे कंठ के द्वारा सुंदर रागों में गाते हैं, इसलिए भगवान का ये कंठ है। और लंका कांड भगवान का मुख है, भगवान का मुख लंका कांड, जिस कांड में भगवान ने सबका भक्षण किया, सबको भगवान खा गए, निगल गए। वास्तव में कुछ लोग कह सकते हैं कि भगवान का मुख तो बहुत सुंदर है, पवित्र है और लंका कांड भगवान का मुख है तो भगवान ये सबको निगल गए। वास्तव में भगवान ने जितने भी लोगों को मारा लंका में, वे सब लोग मरे नहीं। भगवान राम ने जितने जितने लोगों को मारा वे सब लोग भगवान राम के धाम में चले गए। गीता के सिद्धांत के अनुसार ये यथा माम प्रपद्यन्ते अंत कालेच माम एव, अंत काल में जिस व्यक्ति की जैसी बुद्धि और जैसी दृष्टि होती है उनको वैसा स्वरूप प्राप्त होता है। अब भगवान जिसको मारेंगे वे तो भगवान के सामने ही खड़ा होगा, भगवान को देखते देखते मरते थे, इसलिए सब लोग भगवान के धाम। भगवान का मुख है लंका का, भगवान ने सबको अपने अंदर, भगवान के दो स्वरूप परीक्षित महाराज दशम स्कंद के प्रारंभ को कहते हैं अंतर बहिर काल रूपे। गीता में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन कराया और अर्जुन ने देखा कि अरे बाप, भगवान के स्वरूप में भूत भविष्य वर्तमान ये अनेक अनेक राजा महाराजा ये सब लोग भगवान के मुख की ओर जा रहे थे, पूरा संसार भगवान के अंदर। और उस समय अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आप इस स्वरूप में कौन हो, मैं तो आपको जान नहीं पाया पहचान नहीं पाया, भवस्य क उग्र रूपम, आप कौन हो। तब भगवान ने कहा अर्जुन कालोस्मि लोक क्षय कृतम प्रवुत्तम, इस संसार में जो लोग भजन नहीं करते हैं मेरी भक्ति नहीं करते हैं उन लोगों के लिए मैं काल हूं और सबको निगल जाता हूं। देख रहे हो ना तुम, ये रति अतिरति महारथी, ये कर्ण दुर्योधन पितामह भीष्म चने की तरह भगवान के दांत में फंसे हुए थे। इस संसार में कितना भी बड़ा प्रतापशाली या प्रभावशाली व्यक्ति हो भगवान के मुख का एक निवाला है, एक निवाला। परंतु कृष्ण ने कहा जो लोग मेरी भक्ति करते हैं उनके लिए मैं काल नहीं, उनके लिए तो मैं सर्वांग सुंदर श्याम सुंदर या रघुपति राघव के रूप में मैं प्रकट होता हूं, अवतरित होता हूं। यह लंका कांड जो है भगवान का मुख है क्योंकि इस कांड में भगवान ने सबका भक्षण किया है। ऐसे ही भगवान इस संसार में सबका भक्षण करके तो बैठे हैं, पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड भगवान के अंदर है। एक बार द्वारका का प्रसंग, पांडवों में से जो मंजले भैया थे भीम, कृष्ण को मिलने के लिए हस्तिनापुर से द्वारका गए। उस समय कृष्ण भोजन कर रहे थे तो दुर्योधन आए द्वार पर खड़े रहे, बोले कृष्ण से मिलने आया हूं। द्वारपाल ने क्षमा कीजिए भीम को रोक दिया, भीम भाई आप खड़े रहो जरा हम अंदर कृष्ण को खबर करते हैं। कृष्ण भोजन कक्ष में भोजन ग्रहण कर रहे थे, कहा महाराज भीम भाई आए हैं हस्तिनापुर से, भीम आए हैं। तब कृष्ण ने कहा उनको आने मत देना, उनको बाहर ही खड़े रखो, बहुत खाते हैं, यदि मेरे साथ यहां मैं खा रहा हूं और वो आ गए और मेरे साथ खाने बैठ गए तो मैं भूखा रह जाऊंगा, उनको आने मत। कृष्ण मजाक कर रहे थे, अब लक्ष्मी के नाथ है उनके पास भोजन की कहां कमी है, लेकिन कृष्ण ने कौतुक किया कि उनको आने मत देना वो बहुत पेटू है बहुत खाते हैं, वो आएंगे तो फिर मेरा पेट खाली रह जाएगा। तब तक तो भीम आ ही गए थे, भीम किसी के रुकाने रुकने वाले नहीं थे। भीम आए और कृष्ण को कहा प्रभु मैं तो पेटू हूं मानता हूं, 25-50 लड्डू एक साथ खा जाता हूं, परंतु आपसे बड़ा पेटू कोई नहीं है क्योंकि आप तो पूरे ब्रह्मांड के ब्रह्मांडों को अपने पेट में दबा कर रखे हो। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय स्कंद के 25वें श्लोक में वेद व्यास जी ने लिख दिया यस्य ब्रह्मच क्षत्रिमच। इस संसार में जितने भी ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है या शूद्र है, उभे भवतु ओदनम, ये सब लोग कौन है, भगवान के पेट के लिए भोजन है। इस संसार का ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य या शूद्र ये सब लोग काल रूपी भगवान का एक निवाला है। मृत्यु यस्योप उपचन्न क इथ वेद यात्रा, भगवान साक्षात काल के समान और उसके लिए भगवान उनको भोजन बना लेते हैं। इस प्रकार लंका कांड जो है भगवान का मुख है और अंत में सातवां उत्तर कांड भगवान का मस्तिष्क है। भगवान श्री रामचंद्र का मस्तिष्क क्यों कहा गया? क्योंकि इस उत्तर कांड में अनेक ज्ञान और भक्ति की बात हुई है। उत्तर कांड में काकभूषणी जी के द्वारा ज्ञान तत्व, वैराग्य तत्व और सबसे बड़ा भक्ति तत्व की बात हुई है, जो सार स्वरूप। तो इस प्रकार भगवान रामचंद्र के अंग ही यह रामायण है। और भक्तों, इस रामायण को अनेक भक्तों ने लिखा है। सतयुग के प्रारंभ में इस रामायण को चरित्रम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम। वाल्मीकि ऋषि ने भगवान रामचंद्र की कृपा से इस रामायण को बहुत सुंदर रूप से, सुंदर ढंग से लिखा। परंतु जब वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर दी, उसी समय हनुमान जी ने भी एक बहुत सुंदर रामायण ग्रंथ की रचना की, हनुमान नाट्य करके उनका नाम दिया। और एक बार वाल्मीकि ऋषि घूमते 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 हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी ने अपनी रामायण बताई, प्रभु ये मैंने लिखा है, आप पढ़िए। और हनुमान जी के द्वारा लिखी हुई रामायण को पढ़कर वाल्मीकि ऋषि आनंद विभोर हो गए, नाचने लगे, प्रसन्न हो गए। और वाल्मीकि को प्रसन्न देकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए, बोले वाह, इतनी सुंदर रचना है। बोले जो चाहिए वो मांग लो। तब वाल्मीकि ऋषि ने सोचा कि हनुमान जी महाराज ने तो मेरे से भी अच्छी रामायण का निर्माण किया, और भक्तों हनुमान जी से अच्छी रामायण कौन लिख सकता है जो भगवान के दास है, दासस्य रघुनाथस्य। तब वाल्मीकि के मन में एक भगवान के ही योग से एक दुर्भाव उत्पन्न हुआ और हनुमान जी महाराज को कहा, हनुमान जी महाराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो और आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो आपके द्वारा ये जो रामायण लिखी है उसे नदी में डाल दो। वाल्मीकि ऋषि ने सोचा कि यदि हनुमान जी की रामायण रही तो मेरी रामायण कोई पढ़ेगा नहीं, इसलिए अच्छा है इसकी रामायण चली जाए। कभी कभी भक्तों के हृदय में भी ये भाव तरंगे उठती है ईर्ष्या निंदा की, परंतु कुल मिलाकर यही लगता है कि शायद भगवान इसी से प्रसन्न होंगे। भगवान की प्रेरणा से यह सब कार्य हुआ और हनुमान जी महाराज ने अपने ग्रंथ को नदी में डाल दिया। परंतु हनुमान जी को मन में हुआ कि तुम सतयुग में जन्म लेकर कलयुग में रहने वाले लोगों जैसी बुद्धि रखते हो। वास्तव में सतयुग की बुद्धि नहीं, कलयुग में लोगों की ऐसी बुद्धि है। बोले कलयुग जैसी बुद्धि है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा कलयुग में जन्म होगा। ये हनुमान जी ने श्राप दिया। और हनुमान जी ने कहा कि मैंने मेरी रामायण नदी में डाल दी है, अब ऊपर से मैं तुम्हें दूसरा श्राप देता हूं कि तुम्हें इस रामायण को इस नदी से बाहर निकालकर कलयुग में संसार के लोगों के सामने प्रकट करना होगा। वाल्मीकि ऋषि ने हनुमान जी के श्राप को शिरोधार्य कर लिया, प्रसन्न हो गए, फिर से नाचने लगे, प्रभु ये श्राप नहीं, ये तो आपका अनुग्रह है। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, ये तो परम अनुग्रह है। तब हनुमान जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। भविष्य पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं, वाल्मीकि स तुलसीदास भाषा रूपाम करिष्यति। वही वाल्मीकि ऋषि, वही सतयुग के वाल्मीकि इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में जन्म लिए। और उन्होंने क्या किया, भाषा रूपाम करिष्यति। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के द्वारा जो ग्रंथ लिखा था उस रामायण को और कुछ नहीं, केवल भाषा में रूपांतर, ट्रांसलेट किया। रामचंद्रम कथा साध्वीम कलो देवी भविष्यति। इस शास्त्र का अकाट्य प्रमाण वेद व्यास जी ने भविष्य पुराण में लिखा है। ताकि किसी को मन में संदेह ना हो। श्री प्रभुपाद जी भी डॉक्टर प्रकाश को लेटर लिखते हुए एक जगह पर लिखते हैं कि यदि आपको अपने जीवन में प्रगति करनी है तो आपको तीन चीज करनी होगी, और उनमें तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं, आपको इस संसार के अनेक शुद्ध संत और भक्तों के चरित्र को सुनना चाहिए और उनका प्रचार करना चाहिए। और वह शुद्ध संत कौन है? तो प्रभुपाद जी ने अपनी कलम चलाई, चैतन्य महाप्रभु और गोस्वामी तुलसीदास। श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि तुलसीदास जी जैसे संतों के चरित्र को गाना चाहिए। वास्तव में तुलसीदास जी की ये जो हनुमान जी के कृपा पात्र, और इतना ही नहीं शिव जी के कृपा पात्र, आप गोस्वामी जी का चरित्र सुनोगे, वास्तव में देवी पार्वती ने, शिव जी ने क्या कृपा की है गोस्वामी जी के ऊपर। उनका जन्म तीर्थराज प्रयाग से 15 कोस दूर पश्चिम की ओर यमुना के तट पर स्थित बांदा नाम के जिले में राजापुर नाम के गांव में हुआ। बहुत ब्राह्मण रहते थे। इनके पिता का नाम आत्मराम दुबे और इनकी माता का नाम हुलसी देवी था। हुलसी के पुत्र तुलसी, और गर्भ से 12 महीने तक गर्भ में रहे और 12 महीने के बाद गोस्वामी इस संसार में आए। जन्म लेते ही पिता की माता की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हो गई, अनाथ हो गए, बेचारे अकेले भटक रहे थे, और भोजन के लिए एक निवाला भी नहीं मिला। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 1-1 महीने तक भूखे रहे। देवी पार्वती से कैलाश में बैठकर देखा नहीं गया। साक्षात देवी पार्वती कैलाश धाम से उतरकर एक स्त्री का रूप बनाकर ये छोटे से बालक को भोजन कराने के लिए आती थी। पर एक दिन सबको पता चला कि ये कोई साधारण बालक नहीं, इसको भोजन कराने के लिए साक्षात देवी पार्वती आती है। भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिया, ये हम आपको भोजन करा रहे हैं, ऐसे ही फोकट का भोजन नहीं करा रहे हैं, आपको दिव्य ग्रंथ की रचना करनी है, इसलिए भोजन किया जा रहा है। शिव जी ने कहा कि आप रामायण की रचना करो। गोस्वामी ने कहा मैं तो मूर्ख हूं, अभूत बालक हूं, मैं क्या कर सकता हूं। शिव जी ने कहा मेरी कृपा से तुम ग्रंथ का निर्माण करना प्रारंभ करो। घूमते 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 गोस्वामी सरयू नदी के तट पर अयोध्या में आए। हनुमान गढ़ी आज भी अयोध्या में यह स्थान है, हम कुछ दिन पहले गए थे, अद्भुत स्थान, परम रमणीय जगह है। वहां पर हनुमान गढ़ी के पास गोस्वामी जी पहुंचे और वहां पर निवास किए, और वहां रहकर उन्होंने यह दिव्य ग्रंथ की रचना की। बहुत कम समय में गोस्वामी जी ने यह ग्रंथ का निर्माण किया, और इस ग्रंथ को लेकर गोस्वामी शिव जी के क्षेत्र काशी में गए। भक्तों उन दिनों काशी में बहुत बड़े बड़े पंडित वेदांती वेदों को पढ़कर अपना जीवन चला रहे थे। उन लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी के इस रामायण का बहिष्कार किया। उन्होंने सोचा कि हम लोग संस्कृत के श्लोकों को हिंदी में रूपांतर करके लोगों को पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, और हमारी जीवन विहिका चल रही है, हमारा जीवन चल रहा है, और ये रामायण को भाषा में रूपांतर कर चुके हैं, अब तो सब लोग रामायण को पढ़ पाएंगे, हमारा धंधा बिजनेस बंद हो जाएगा। सभी ब्राह्मणों ने मिलकर इस गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रंथ रामचरितमानस का बहिष्कार किया। बोले ये मायावादी ग्रंथ है, ये ग्रंथ प्रमाणित नहीं है। गोस्वामी ने कहा कि शिव जी की कृपा से लिखा है। तो बोले शिव जी को प्रमाण देना होगा। बोले क्या करना चाहते हो? आपके ग्रंथ को शिव जी के मंदिर में रखा जाए। काशी में ज्योतिर्लिंग है, शिव जी के मंदिर में उस शंख को रखा, उस रामचरितमानस ग्रंथ को रखा गया। मंदिर के दरवाजे बंद किए गए। भक्तों, ये कल का इतिहास है। जब मंदिर के दरवाजे खुले, उस ग्रंथ के ऊपर साक्षात भोलेनाथ प्रकट होकर ग्रंथ के ऊपर अपना सिग्नेचर हस्ताक्षर कर दिए, सत्यम शिवम सुंदरम। ये ग्रंथ सत्य है, शिव मंगलकारी है और सर्वाति सुंदर है, शिव जी ने कह दिया। शिव जी ने अपना हस्ताक्षर, ये जो सत्यम शिवम सुंदरम सुनते हैं ना, ये और कुछ नहीं, शिव जी का हस्ताक्षर है, जिन्होंने ये रामचरितमानस के ऊपर किया था। और सब लोग गोस्वामी के चरणों में गिर गए। वाह, प्रमाणित कर दिया शिव जी ने। फिर भी संसार के जो ईर्ष्या से भरे हुए लोग होते हैं, उनकी ईर्ष्या कम नहीं हुई। मधुआ और सिखवा नाम के चोर को भेजा, जाओ और कैसे भी करके इस ग्रंथ को चुरा लो, और फेंक देंगे। गोस्वामी जी अपने कुटिया में आराम से सो रहे थे, ग्रंथ बाजू में पड़ा था, और उस समय दो चोर आए उस ग्रंथ को चुराने के लिए। परंतु भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान निरंतर विराजमान होते हैं। दो चोर आए और उस कुटिया के पीछे दो लड़के खड़े थे, बहुत सुंदर पीतांबर पहना था, हाथ में धनुष बाण था, और दोनों भाई पहरा लगा रहे थे, ऐसे ऐसे घूम रहे थे कुटिया के आजू बाजू में। वह चोर वहां पर गए और उन्होंने चोर को पकड़ लिया और धमकी दिया, यदि यहां पर चोरी करने का प्रयास किया ना, ये धनुष बाण देखते हो मार डालेंगे। वे दोनों चोर चले गए और जिन ब्राह्मणों को ब्राह्मणों ने भेजा था, उस ब्राह्मणों के पास गए और बोले, कहें कि ये गोस्वामी पैसे वाले कब से हो गए, सिक्योरिटी गार्ड रखना शुरू कर दिया है। बोले, खाने के लिए वांदे हैं और वो सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। बोले, हाँ। बोले, कौन सी कंपनी वाले सिक्योरिटी गार्ड थे? कंपनी वाले होते ना, यहाँ लेबल लगा हुआ होता है। बोले, लेबल तो नहीं देखा था, लेकिन उसका रूप का वर्णन जरा हम आपको करते हैं। दो लड़के जैसे थे, एक श्याम वर्ण का था, बहुत सुंदर मुकुट पहना था, पीतांबर धारण किया हुआ था, धनुष बाण तरकस हाथ में थी, और दूसरा बहुत सुंदर गौर वर्ण का था। और दोनों का वर्णन किया तो ब्राह्मण लोग दोनों हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु हमें क्षमा करना, गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस की रक्षा करने के लिए आपको साकेत धाम से उतरना पड़ा, प्रभु आप हमें क्षमा कीजिए। साक्षात भगवान आए इस ग्रंथ की रक्षा करने के लिए, यह है प्रमाण। तो संसार में कुछ लोग कहते हैं कि ये मायावाद ग्रंथ है, इस ग्रंथ में मायावाद है। हो सकता है कुछ लोगों ने इस ग्रंथ में, और भी जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं वे चैन से नहीं रहे, इस ग्रंथ को उलट पुलट कर दिए। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना को इस प्रकार से तिरस्कृत किया जाए, नहीं तो ये बहुत बड़ा अपराध होगा। एक बार हमने सूरत में राम कथा की और उस राम कथा में गोस्वामी जी के अनेक प्रसंगों को रामायण से हमने बताया और अनेक लोगों ने बहिष्कार किया। तब हम हमारे गुरु जी के पास गए, दोनों हाथ जोड़कर कहा कि गुरु जी, इस प्रकार से लोग जब हम रामचरितमानस के ऊपर बोलते हैं तो गोस्वामी जी को मायावादी कहते हैं और अनाप शनाप कहते हैं। तब हमारे गुरुजी ने इतना ही कहा था, आज भी मुझे वह शब्द याद है, लाल गोविंद, इस संसार में गोस्वामी जी को कुछ कहना, गोस्वामी जी का अपमान करना, गोस्वामी जी के दोष को कहना सूर्य के ऊपर थूकने के बराबर है। जैसे सूर्य के ऊपर आप थूकने का प्रयास करो वो अपने ऊपर ही गिरता है, वैसे संसार में गोस्वामी के चरित्र के ऊपर यदि कोई दाग लगाता है वह चरित्र उनके ऊपर उनका ही अपमान होगा और उनको ही संसार का पाप लगेगा। गोस्वामी परम शुद्ध संत, परम शुद्ध भक्त, और उनकी रचना परम शुद्ध है। केवल दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए, हमारी आंख पर पीले रंग का चश्मा है, पूरा जगत पीला दिखता है, इसका अर्थ ये नहीं कि जगत पीला है। ये जगत पीला नहीं हुआ है, अरे हमारी आंख पीली हो गई है। दूसरों को सुधारने से पहले अपने आप को सुधारना चाहिए। इस संसार में इतने बड़े संत और महात्मा में जब दोष दिखना शुरू हो जाए, तब समझना चाहिए कि हम में कुछ दोष है।